थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन प्रिय भाई बहनों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके साथ मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन करके परमेश्वर के वचन के आशीषों को प्राप्त करते हैं और हमें पत्र द्वारा अपनी गवाहियों को हम तक पहुँचाते हैं। प्रिय मित्र, यदि आपने भी इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त किया है तो अवश्य ही आज अभी इसी वक्त बैठकर खत लिखें ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त करके परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों शमूएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय से आज हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद ने अपने मित्र योनातान से उसके मरणोपरांत भी निष्ठा निभाई और उसके पुत्र मपीबोशेत को अपने साथ महल में रखा तथा उसे शाऊल की सी संपूर्ण संपत्ति जो उसकी थी उसको दिलवाई। मपीबोशेत को उसके साथ मेज पर भोजन करने का सम्मान भी प्रदान किया गया। मित्रों, आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 10 से आगे अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि अमोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय, इसका वर्णन हमें मिलता है। साथ ही साथ अध्याय 11 में उसके दो पापों का भी वर्णन हम देखेंगे। तो आइए हम अमोनियों और अरामियों से युद्ध के विषय में देखें। आप मेरे साथ बाइबल निकाल लें, दूसरा शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1-3 पद। दूसरा शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय 1-3 पद, यहाँ पर लिखा है, इसके बाद अमोनियों का राजा मर गया और उसका हनून नाम पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हनून के पिता नाहास ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हनून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया और दाऊद के कर्मचारी अमोनियों के देश में आए। परंतु अमोनियों के हाकिम अपने स्वामी हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मंशा से ही भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने कर्मचारियों को तेरे पास इसी मंशा से नहीं भेजा कि इस नगर में ढूंढ ढाड़ करके और इसका भेद लेकर इसको उलट दे? मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का मित्र भाव गलत समझा गया। उन्हें दाऊद पर विश्वास नहीं हुआ। वे सोचते थे कि दाऊद उन पर आक्रमण करने के हेतु उनका भेद लेने के लिए इन लोगों को भेजा है। तब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 10 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वा कर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यह घोर अपमान था। इससे बढ़कर अपमान के बाद दाऊद के राजदूतों के लिए अन्य कोई और नहीं थी। कुछ टीकाकारों का कहना है कि यह हानून द्वारा दाऊद को युद्ध की ललकार थी, जबकि दाऊद ने तो सद्भावना और शांति की मनसा की थी। तब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 10 अध्याय उसके 5 और 6 पद में, इसका समाचार पाकर दाऊद ने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे बहुत लजाते थे, और राजा ने यह कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो, तब लौट आना। जब अमोनियों ने देखा कि हमसे दाऊद अप्रसन्न है, तब अमोनियों ने बेत्र होब और सोबा के 20,000 आरामी प्यादों को और 1,000 पुरुषों समेत माका के राजा को और 12,000 तोबी पुरुषों को वेतन पर बुलवाया। मित्रों, हम देखते हैं कि अब अमोनियों को बोध हो गया कि उन्होंने जो किया है वह दाऊद को निश्चय ही अस्वीकार्य होगा। अतः उन्होंने आरामियों से वेतन पर सैनिक लेकर युद्ध की तैयारी की। पहला इतिहास अध्याय 19 उसके 6 से 7 पद में लिखा है, उन्होंने कितना वेतन दिया? मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 10 अध्याय उसके 7 से 10 पद में, जहां पर लिखा है, यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की समस्त सेना को भेजा। तब अमोनी निकले और फाटक ही के पास पांति बांधी और सोबा और राहोब के आरामी और तोब और माका के पुरुष उनसे न्यारे मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी है, योआब ने उस सब बड़े बड़े इसराइली वीरों में से बहुतों को छांटकर आरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उसने अमोनियों के सामने उनकी पांति बंधाई। मेरे मित्रों, अब तक इसराइली युद्ध में अनुभवी हो चुके थे। योआब ने अपने सर्वोत्तम योद्धा आरामी सेना के सामने खड़े किए कि वे अमोनियों तक न पहुंच पाए। मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, परंतु आरामी इसराइलियों से भागे और दाऊद ने आरामियों में से 700 रथियों और 40,000 सवारों को मार डाला और उनके सेनापति सोबक को ऐसा घायल किया कि वह वहीं मर गया। यह देखकर कि हम इसराइल से हार गए हैं, जितने राजा हद्देजेर के अधीन थे उन सबों ने इसराइल के साथ संधि की और उसके अधीन हो गए और आरामी अमोनियों की और सहायता करने से डर गए। मेरे प्रिय मित्रों, यह इसराइल की महान विजय थी। इस प्रकार दाऊद निस्संदेह अपने युग का महान राजा हुआ। और यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम आगे देखेंगे अध्याय 11 से, जिसमें हम दाऊद के दो पाप को पाते हैं। अब हम दूसरे शमूएल की पुस्तक के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक मैंने दाऊद की परेशानियां रखा है। प्रथम भाग में हमने दाऊद की विजय को देखी, परंतु परमेश्वर के आशीर्वाद से दाऊद पृथ्वी के महान राजाओं में से एक हो गया। तथापि दाऊद के पाप जो इस अध्याय में अनावृत किए गए हैं, उनके कारण उसे परमेश्वर के दंड के अधीन आना पड़ेगा। अब से आगे दाऊद की समस्याओं का युग आरंभ होता है। उसका जीवन हृदय घातों का क्रम बन जाता है। मेरे मित्रों, उसके इन पापों के कारण बैरी आज तक उसकी निंदा करते हैं। वे ठट्ठा करके कहते हैं, यह मनुष्य परमेश्वर के मन का मनुष्य था। मित्रों, दाऊद के ये पाप श्वेत पर काले दाग की नाई उभर कर दाऊद की महानता को धूमिल कर देता है। स्मरण रखें कि पाप दाऊद के जीवन में एक घटना थी, न कि उसकी जीवन शैली। परमेश्वर का वचन दाऊद के पाप को छिपाता नहीं है, वह उस पर सफेदी नहीं पोतता है। परमेश्वर नहीं कहता है कि वह पाप नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे पाप कहा और दाऊद को इसका दंड भी दिया। तो आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय उसका एक पद। लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इसराइलियों को भेजा और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। मित्रों ध्यान दें कि यह वह समय था जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे। यह वैसे ही था जैसे आज जानवरों के शिकार का समय होता है। आज भी कहीं कहीं युद्ध का मौसम होता है, जैसे वियतनाम में वर्षा ऋतु में युद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि वहां बहुत अधिक दलदल होता है। वर्षा के बाद युद्ध फिर आरंभ हो जाता है। मेरे मित्रों दाऊद के युग में युद्ध हमारी कल्पना से बढ़कर आधुनिक थे। संसार में जो दो विश्व युद्ध हुए उनमें शीत ऋतु से महान हानि हुई थी, शत्रु से नहीं, परंतु उन्होंने युद्ध रोका नहीं। दाऊद के युग में युद्ध का मौसम होता था। संभवतः वे हमसे अधिक सभ्य थे, उन्होंने कम से कम शांति के समय का मान तो रखा। मित्रों दाऊद ने योआब को अमोनियों से युद्ध करने के लिए भेजा और वह यरूशलेम में ही रुक गया। यह तो दाऊद के स्वभाव के विपरीत था। उसने ऐसा क्यों किया? इस विषय में मेरी एक ही राय है, महल बन जाने के बाद उसे उसमें रहकर बड़ी शांति मिली थी। राजमहल अद्दुलाब के गुफा से सर्वथा भिन्न था। मेरे मित्रों उसका अब तक का जीवन तो गुफाओं में ही बीता था, परंतु महल में सब सुख सुविधाएं थी। दाऊद को सियोन पर्वत से भी अत्यधिक लगाव था, वह वहां से हटना नहीं चाहता था। समृद्धि उनके स्त्री पुरुष का फंदा बनी, अतः दाऊद यरूशलेम में ही रुका रहा। यह उसकी पहली भूल थी। उसे युद्ध में जाना था परंतु वह नहीं गया। हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। मेरे प्रियो उस युग में लोग छतों पर अपनी संध्या बिछाया करते थे। उनके घरों में न तो सामने की ओर और न ही पीछे की ओर बरसातियां नहीं होती थी। आज भी पुराने नगरों में समतल छतों ही में लोग परिवार रूप में एकत्र होते हैं। दाऊद कुछ चिंतित हो अपनी छत पर चहलकदमी कर रहा था। मेरे विचार में उसके मन में अनेक चिंताएं थी। अति संभव था कि उसका विवेक उसे परेशान करता था कि वह घर में है और उसके सैनिक युद्ध करते हैं। छत पर टहलते समय उसने स्त्री को छत पर से स्नान करते हुए देखा। यद्यपि यह दाऊद का पाप था और परमेश्वर ने भी उसे ही दोष दिया, बतशेबा भी इसमें सहभागी थी। उसे मर्यादा का पालन करना था। मेरे प्रियो अधिक बुद्धिमान बनने का संकट मोल लेते हुए भी मैं कहूंगा कि हम जिस युग में रहते हैं उस युग में नारियों के वस्त्र पुरुषों के लिए बड़ी परीक्षा का कारण है। मैं सोचता हूं कि नारियां, मसीही नारियां भी समझ रही हैं कि वे ऐसे वस्त्र धारण करते समय वास्तव में क्या करती हैं। मैं अनेक कलीसियाओं में गया और वहां देखा कि एकाकी गायिका खड़ी होकर आपको स्वर के द्वार तक ले जाती है और जब बैठ जाती है तो आपको नरक के द्वार पर पहुंचा देती है। मेरे विचार में बतशेबा भी कुछ सीमा तक इस पाप में उत्तरदायी थी। वह खुले आम स्नान क्यों कर रही थी? मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसे स्थान पर जहां कोई उसे देख पाए। मैं सोचता हूं कि उसके मन में यह अभिलाषा थी कि दाऊद उसे देखे, अतः वह जानबूझकर छत पर स्नान कर रही थी। हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? यहाँ पर हम जानते हैं कि उरिया वास्तव में एक परदेशी था। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 4 पद में, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कहानी अश्लील है, परंतु हमारे समझने के लिए सरल शब्दों में व्यक्त की गई है। यदि दाऊद युद्ध के मैदान में होता तो परीक्षा में कभी न पड़ता। यदि बैतशेबा स्नानागार में स्नान कर रही होती तो ऐसा अनर्थ नहीं होता। हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और वह स्त्री गर्भवती हुई तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझ में गर्व है। मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद के द्वारा से वह गर्भवती पाई जाती है। दाऊद अब परेशानी में फंस गया है, अब वह क्या करे। बलशेबा का पति उरिया एक महान योद्धा और दाऊद का निष्ठावान अनुयायी था। हम दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। मेरे मित्रों, दाऊद ने बहाना बनाकर उरिया को युद्ध के मैदान से बुलाया कि समाचार जाने, और वास्तव में वह अपने पाप को उसके द्वारा से ढकना चाहता था। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। मेरे मित्रों, दाऊद अपनी ओर से यथा संभव प्रयास कर रहा था कि अपने आप को इस दोष से बचा ले। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पाप में गिर जाता है अपने पाप को छुपाने के लिए एक से एक बढ़कर पाप करता है, अर्थात छुपाने के लिए वह झूठ पर झूठ बोलता है। आइए हम देखें कि आगे क्या होता है। दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उरिया राजभवन में उसके द्वार पर ही लेट गया। युद्ध की स्थिति में उसने घर जाकर विश्राम करना उचित नहीं समझा। यह दाऊद के लिए एक अचंभा की बात थी, वरन लज्जा की बात भी, कि वह युद्ध के समय सुविधाओं का आनंद ले रहा था। मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवन में भी हम आनंद लेना चाहते हैं और परमेश्वर के उस बताए हुए मार्ग पर और अपने जीवन को उस पर ढालने की इच्छा नहीं रखते हैं। दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया। मेरे मित्रों, आप यहाँ पर देखें कि आप यहाँ क्या देखते हैं। दाऊद उरिया को फंसा रहा था कि बर्शेवा के गर्भधारण का कारण वह बन जाए और दाऊद बच जाए, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उरिया अपनी पत्नी के पास नहीं गया। आगे लिखा है दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 11 पद में, उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इसराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं। तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उरिया का चरित्र महान था। वह परदेशी होकर भी इसराइल का निष्ठावान था। इससे दाऊद के पाप और भी विकराल हो जाते हैं। उरिया ने कहा, मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के दास खुले मैदान में डेरे डाले पड़े हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? यह मुझसे नहीं हो सकता है। तब हम देखते हैं दूसरा शमूएल 11 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चरपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। मेरे मित्रों, अब दाऊद दूसरी युक्ति को काम में लेता है। वह उसे मदिरा पिलाता है ताकि वह नशे में हो करके अपनी पत्नी के पास जाए, परंतु वह फिर भी घर नहीं गया। हम आगे देखते हैं दूसरा शामिल 11 अध्याय उसके 14 और 15 पद में। बिहान को दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। मेरे विचार में दाऊद के पाप का यह भाग अत्यधिक गंभीर था। उसने जानबूझकर उरिया की मृत्यु का षड्यंत्र रचा, यह अक्षम्य है। परमेश्वर का वचन दाऊद के कुकर्म में भी लिखता है। परमेश्वर ने उस पर पर्दा नहीं डाला है। मेरे मित्रों, उसने उन्हें स्पष्ट प्रकट किया है और ये तथ्य है कि दाऊद एक अपराधी था। दूसरा सामुएल 11 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, और योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं उसी में यूरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को युद्ध के सामने में लाया और उसे छोड़ दिया ताकि वह मर जाए। मेरे मित्रों, यह कितना ही घृणित कार्य है। हम दूसरा शामिल 11 अध्याय उसके 18 से 20 पद में आगे पढ़ते हैं। तब योआब ने भेजकर दाऊद को यह युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी कि जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे कि तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए, क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, दाऊद की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना केवल योआब के लिए एक बहाना था कि संदेशवाहक संदेश के महत्व को समझने ना पाए। हम दूसरा शामिल 11 अध्याय 21 से 25 पद में पढ़ते हैं, यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का उपराला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह तेबेश में मर गया? फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो यूं कहना कि तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातें वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा कि वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना कि इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे ही उसको नाश कर देती है। तो तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हियाब बंधा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि यह दाऊद की धार्मिकता का ढोंग था। क्या आप उससे लज्जित नहीं हैं? वह वास्तव में पापी था। उसने एक भयानक अपराध किया था। उसके साथ क्या करना चाहिए? हम देखेंगे कि परमेश्वर इसके विरुद्ध में उसे दंड देता है। दूसरा शामिल 11 अध्याय 26 और 27 पद में लिखा है, जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत चुके, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यह वह क्रोधित हुआ। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि उस काम से जो दाऊद ने किया था, यह वह क्रोधित हुआ। इससे कभी न चूके। दाऊद पाप करके बच नहीं पाया। अब तक के जीवन में दाऊद ने बहुत विजय पाई थी, परंतु अब से मरने तक दाऊद का जीवन क्लेशों से पूर्ण रहेगा। क्या आपसे कहूं, मेरे मित्रों, कि आप पाप में गिर सकते हैं? मुझसे किसी ने पूछा, क्या एक मसीही जन मदिरा का नशा कर सकता है? मैंने कहा, हाँ, एक मसीही जन नशा कर सकता है। परंतु वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, क्या वह उससे बच सकता है? यही तो समस्या का कारण है। सांसारिक मनुष्य बच सकता है। परमेश्वर शैतान की संतान की ताड़ना नहीं करता, परंतु अपनी संतान को वह पकड़कर पीटता है। क्या आप किसी ऐसे बात को मानेंगे जिसकी पिटाई हुई हो? मैं वह हूं जो जानता हूं कि आप पाप करके बच नहीं सकते हैं। दाऊद भी नहीं बच पाया था। उसके इस काम से परमेश्वर क्रोधित हुआ था और निश्चय ही वह उसके लिए कुछ करेगा। मेरे मित्रों, दाऊद सोच रहा था कि वह पाप करके बच गया, परंतु कुछ लोग जानते थे। दाऊद का सेनापति योआब सच्चाई को जानता था। यरूशलेम के प्राचीन जो बतशेबा को दाऊद के पास लाए थे, वे भी इस बात को जानते थे, और अन्य कई थे जो इस बात को जानते थे और कई इस बात को नहीं जानते थे। इन जानने वालों के मुंह बंद कर दिए गए थे, उनमें मुंह खोलने का साहस नहीं था। दाऊद सिंहासन पर बैठकर आशय करता होगा। दाऊद के दरबार में लगभग 200 जन विराजते थे। वह निश्चय ही उन्हें देखकर सोचता होगा, क्या इन्हें मेरा काम पता है? कुछ समय पश्चात तो दाऊद निश्चिंत हो गया होगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि इस बात को कोई नहीं जानता है कि मैंने क्या किया है। मेरे मित्रों, चाहे यरूशलेम में यह बात फैली हो या ना फैली हो, दाऊद का गुप्त पाप हमारे गुप्त पाप परमेश्वर से छिपे नहीं है। उसके समक्ष सब बातें खुली हुई है और एक दिन अवश्य खुलेगा। किसी ने कहा है, पृथ्वी पर छिपा पाप स्वर्ग में खुली चर्चा का विषय होता है। परमेश्वर हमारे सब काम को जानता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का पापमय जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि आपका जीवन भी इसी प्रकार का व्यभिचार पूर्ण जीवन है। हो सकता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के कुछ बातों को छुपा रहे हैं। परमेश्वर जानता है और इसका न्याय उसको दिया जाएगा। और हम इस बात को दाऊद के जीवन में भी देखेंगे। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और अगले अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से दाऊद के जीवन में कार्य करता है। मेरे मित्र, आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में एक सबक लें, ताकि हम भी इस प्रकार के पाप में ना पड़ें। परमेश्वर आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु के पीछे